महल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा, इन आधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया, निशब्द पहले जाया तेरे सहारे, अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, ओ बाबा मेरे बाबा। सपनों की उड़ाने तुमसे जीवन की राह तुम बाबा, सफर में खुशी तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा।
राम शांत। रामायण में एक दृश्य है सीता स्वयंवर का, उसमें से एक प्रश्न है आप सबके लिए। सीता स्वयंवर में रावण भी आता है और वो भी शिव के पिनाक नामक उस धनुष को उठाने की कोशिश करता है, पर रावण बहुत शक्तिशाली है, पर इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो शिव का धनुष नहीं उठा पाता। क्यों? रावण अत्यंत शक्तिशाली है, उसकी उम्र तो जनक से भी बड़ी है, और वो स्वयंवर में आया है और उसने कभी कैलाश पर्वत भी अपने हाथ से उठा लिया था, इतना शक्तिशाली था वो। उसके 10 सिर थे, इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो शिव के उस धनुष को क्यों नहीं उठा पाता? अहंकार और इम्प्यूरिटी। कौन सी इम्प्यूरिटी? उसका वहां आने का उद्देश्य केवल सीता उद्देश्य नहीं था, उसे वो धनुष चाहिए था। ऐसा क्या था कि जिस वजह से इतना बलवान, इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो उठा नहीं पाया? किस बल की आवश्यकता थी? पवित्रता का, समर्पण भाव का, और भी कुछ? आत्मिक बल। जो राजा बैठे थे उन्होंने भी उठाने की कोशिश की, और वो सब बलवान, शक्तिशाली, विजेता राजा थे, वो भी नहीं उठा पाए। और राम तो एक बालक है, कोमल बालक। उसने कभी कोई खास युद्ध नहीं लड़े है, फिर भी दिखाया है उसने उठा लिया। वो कौन सा धनुष था? शिव का धनुष था। ड्रामा अनुसार शिव का धनुष पिनाक धनुष था। वो इतना शक्तिशाली धनुष कि उसके लिए कहा जाता है कि उससे इस सृष्टि के तीन भाग किए जा सकते हैं। परंतु रावण इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी उस धनुष को नहीं उठा पाता। कारण, क्योंकि धनुष जो शिव का है वो बाहुबल से नहीं, चरित्र बल से उठाया जाता है। उसको भारी किसने किया था? उठाने वाले के अहंकार ने। रावण एक स्वार्थ की दृष्टि से वहां आया था, और वो शिव का परम भक्त था। परम भक्त, शिव के अतिरिक्त और किसी को नहीं मानता था, फिर भी शिव की कृपा उस पर नहीं हुई। उसका कारण उसके अपने कर्म, उसके अपने पाप, उसके अपने विकर्म। वो बोझ लिए था, उसे वरदान प्राप्त थे, परंतु वरदान को विश्व कल्याण के लिए नहीं, परंतु स्वयं के अहंकार की पूर्ति और संसार के अहित के लिए किया। इसलिए शिव का धनुष वो नहीं उठा पाया, क्योंकि भार विकारों का था, भार पापों का था, भार अहंकार का था। और दूसरी तरफ राम, जिसने एक ही हाथ से उठा लिया, क्योंकि मंशा शुद्ध थी, चेतना निर्विकार थी, और राम के पास चरित्र बल था। तो हम जो कुछ करते हैं वो कहीं ना कहीं लौट कर हमारे पास आता है। इसके पहले भी एक बार सुनाया था, 23 मार्च 1994 अमेरिका में फॉरेंसिक मेडिसिन की मीटिंग हुई थी, जिसमें जो हेड ऑफ द फॉरेंसिक डिपार्टमेंट थे, डॉक्टर मिल, हार्पर मिल, डॉन हार्पर मिल, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी रोनाल्ड ओपस की। रोनाल्ड ओपस नाम का एक व्यक्ति था जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की। आत्महत्या के लिए उसने सुसाइड के लिए क्या किया, 10वीं मंजिल जो थी वहां से छलांग लगाई। सीधा सीधा केस था सुसाइड का। उसने सुसाइड नोट भी लिखी कि मैं बहुत उदास हूं, बहुत डिप्रेस्ड हूं, होपलेस हो गया हूं, इसलिए मैं मर रहा हूं। सिंपल केस थी, केस वहीं क्लोज हो जानी चाहिए थी। परंतु जब ऑटोप्सी की गई तो पता चला कि उसकी मृत्यु कूदने से हुई नहीं, गोली लगने से हुई है। और इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला नीचे तो जाली थी, मतलब ये अनसक्सेसफुल सुसाइड है। पता किया और ये गोली कहाँ लगी, तो गोली उसके सिर पे लगी। और पता किया गोली कहाँ से चली, तो गोली 9th फ्लोर से चली थी। तो अभी केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया, उसने सुसाइड नोट छोड़ी है, 10th फ्लोर से जंप करने की कोशिश की है, परंतु गोली लगने से मृत्यु हुई है। अगर गोली नहीं चलती तो भी, क्योंकि नीचे नेट है, तो इट इज नॉट अ केस ऑफ सुसाइड, केस कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। फिर पता चला 9th फ्लोर पर कौन रहता है, तो 9th फ्लोर पर पता चला एक बूढ़ा और एक बूढ़ी, उसकी पत्नी रहती है, हस्बैंड वाइफ। और वो हस्बैंड अपनी पत्नी को हमेशा धमकाता था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और उनके पास एक गन थी। तो केस इधर चला गया, फिर इन दोनों को पकड़ा गया, पर वो दोनों लड़ने लगे और कहने लगे, वो पति कहता है कि मेरी तो आदत ही है, मैं हमेशा अपनी पत्नी को गन से धमकाता हूं, पर वो जो गन है उसमें गोली कभी नहीं रहती है, वो खाली रहती है। परंतु फिर भी केस तो मर्डर का है, क्योंकि ए को मारने की कोशिश की बी ने, पर गलती से ए को न लग के सी को लग गई, तो मर्डर तो हुआ सी का। ए बी फिर भी गिल्टी है, तो पर उन्होंने कहा गन तो खाली रहती है। फिर बाद में पता चला गन में गोली 6 हफ्ता पहले किसी ने भर दी थी। किसने भरी थी? तो पता चला उनका जो बेटा है वो ड्रग एडिक्ट हो गया था, और ड्रग एडिक्ट होने की वजह से अपनी माता से पैसे मांगता था, मम्मी ने मना कर दिया, इसलिए बहुत गुस्सा था उसको। इसलिए उसने सोचा मम्मी, उसकी माँ को ही मार दूँ, तो उसने उस गन में गोली भर दी, ताकि उसके पिताजी वो गोली ले और उसकी माँ को मार दे। तो सारा केस अब चेंज हो गया, ये दोनों भी नहीं, क्योंकि गोली जिसने भरी, इंटेंशन टू मर्डर, चलाने वाला दोषी नहीं है, जिसने भरी थी तो उसका वो बेटा, उसने गोली भरी थी। क्यों भरी थी? क्योंकि पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट हो गया था, तो माँ से बहुत गुस्सा था उसे, कई बार झगड़ा किया था माँ से, इसने गोली भर दी और उस पिता ने माँ को मार दिया। परंतु द लास्ट ट्विस्ट इन द स्टोरी, बाद में पता चला वो बेटा वही है, रोनाल्डो पस, जिसने सुसाइड की। तो गोली किसने भरी? उसने। चलाई किसने? पिता ने। किसको मारने के लिए? माँ को मारने के लिए। और ये क्या कर रहा था? आत्महत्या, ऊपर से गोली इसको ना लग के उसको लगी। तो पहले केस सुसाइड का था, बाद में होमिसाइड का बना, पर बाद में पता चला कि लास्ट दोषी तो यही है लड़का, वापस केस क्लोज हो गई। कर्म फल से कोई भी छूट नहीं सकता। कर्म इज अ सिंसियर सर्वेंट, वो अपने मालिक को ढूंढ ही लेता है। कर्म अपने मालिक को ढूंढ ही लेता है, चाहे कहीं पर भी छिपा हो, कैसा भी हो, कहां पर भी हो, वो ढूंढ ही लेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तसफल चाखा। हर एक हमने जो भी कर्म किए अपने इस जीवन में, वो सब लौट कर आएंगे। आज की अव्यक्त मुरली, तारीख 3/5/77। कर्म की फिलॉसफी, कर्म के सिद्धांत भगवान तब बता रहे हैं जब हम में से कितनों का जन्म ही नहीं लिया हम, तब ये मुरली चल रही है 77 में। तो बाबा ने कहा बाप के दो रूप है, एक तो वो बाबा लीलाएं देखते हैं, पहले कहा जैसे बाबा के लिए गायन है भगवान की लीला, अपरंपार है, वैसे बच्चों की लीला भी कैसी है, विचित्र है, वंडरफुल है। और बाबा ये लीलाएं देखते रहते हैं, और देख के बाबा के दो रूप है, एक तो वो मर्सीफुल भी है और जस्टिस भी है। मर्सीफुल बनकर क्या करता है, माफ कर देता है। दूसरा रूप उसका सुप्रीम जस्टिस का है, इसमें वो माफ नहीं करता। और एक नियम बताया है इस ड्रामा का, इस मुरली में, कौन सा नियम है वो, कौन सा अनादि नियम, सबसे बड़ा नियम, लॉ, एक का एक लाख गुना प्राप्ति भी है तो लाख गुना पश्चाताप भी है। अगर अच्छे कर्म करो तो तुरंत क्या मिलेगा, खुशी मिलेगी, लाख गुना प्राप्ति है, परंतु यदि विकर्म किया तो उसका पश्चाताप भी है। ये इस ड्रामा का, और ये ऑटोमेटिक है, ऐसा नहीं कि भगवान बैठ के वहां कर रहा है कि अच्छा इसने अमृत वेला इतने लोगों को सकाश दिया तो इसको ज्यादा मार्क्स, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। ही डजंट इंटरफियर, भगवान दो डिपार्टमेंट में इंटरफियर नहीं करता है, कौन से, कर्म और दूसरा प्रकृति, प्रकृति को इंटरफियर नहीं करता ना कर्म में इंटरफियर करता है। तुम अमृत वेला करो तुम्हें खुशी होगी, निस्वार्थ कर्म करो खुशी होगी, सेवा करो खुशी होगी। तो इस रूल को भूलना नहीं है। बाबा ने कहा ये अनादि लॉ है, ड्रामा का लॉ है, संगम युग का लॉ है, और सबसे बड़ा है, द ग्रेटेस्ट लॉ ऑफ दिस ड्रामा। और ये ऑटोमेटिक मशीनरी है, और ये मशीनरी फास्ट होगी। बच्चे कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, लीलाएं बताइए। एक तो कई बार माया से सामना ही नहीं कर पाते, हार जाते। दूसरा परख नहीं पाते माया को कि यही माया है। एक इंग्लिश लेखक ने अपनी जीवन कहानी लिखी है, 4 चैप्टर्स, इसको याद रखना है। चैप्टर 1, मैं जा रहा था, गड्ढा था, मैं जा रहा था, गड्ढा था रास्ते में, मैं गड्ढे में गिर गया, अंदर से मैंने चिल्लाया मेरा दोष नहीं है, मैं कभी निकल नहीं पाया। चैप्टर क्लोज। चैप्टर 2, ये जीवन कहानी है, ऑटोबायोग्राफी। चैप्टर 2, मैं रास्ते से जा रहा था, गड्ढा था, मैं गड्ढे में गिर गया। एक्चुअली मुझे पता था गड्ढा है, पर मैंने ऐसे दिखाया कि मैंने देखा ही नहीं, फिर गड्ढे में गिर गया, फिर मैंने चिल्लाया दोष मेरा नहीं है, मुझे बहुत टाइम लगा निकलने को। चैप्टर 3, मैं जा रहा था, मुझे पता था गड्ढा है, फिर भी गिरा क्योंकि आदत हो गई थी, पर मैंने कहा दोष मेरा है, तुरंत बाहर निकल गया। चैप्टर 4, मैं जा रहा था, गड्ढा था, मैं गड्ढे के बाजू से गया। चैप्टर 5, मैं रास्ता ही बदल दिया, उधर से गया ही नहीं। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है, मैं जा रहा था, गड्ढा था, और मैं गड्ढे में गिर गया, पर मैंने क्या कहा, इट्स नॉट माई फॉल्ट एंड आई वॉज देयर फॉर एवर, मैं निकल ही नहीं पाया वहां से, अपने कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, किस पर डाल दी, दूसरे पर, मेरा दोष नहीं है, परिणाम कभी नहीं निकल पाया। सेकेंड टाइम, गड्ढा था मुझे पता था, पर मैंने ये दिखाया, मैंने देखा ही नहीं, मुझे क्या पता, गिर गया, और गिरने के बाद फिर क्या कहा कि मेरा दोष नहीं है, बहुत टाइम लगा निकलने को। तीसरी बार गिरा, क्यों गिरा, आदत बढ़ गई, 2 बार गिरे, तीसरी बार अपने आप गिरा, परंतु भले गिरा बट एक रियलाइजेशन है, क्या, गलती मेरी है, एंड आई केम आउट इमीडिएटली. चैप्टर फोर. मैं गया, गड्ढा था, गड्ढे को देखा परंतु उसके बाजू से निकल गया. क्यों निकल गया? क्योंकि अनुभवी बन गया ना अभी. और चौथा, पांचवा, उधर से जाना ही नहीं है क्योंकि पता है उधर गए तो गड्ढे में गिरते. वो आप चौथा, छठवा, सातवा कितना भी बना सकते हो. तो माया को डिस्क्रिमिनेट करना, परखना, हर व्यक्ति की माया अलग है, हर व्यक्ति की. पर विषम परिस्थितियों में भी जो मन को स्थिर रखता है, विवेक से काम लेता है, बेचैन नहीं होता, क्योंकि परिस्थितियां बहुत बहुत विकराल है, तो माया को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते. अगला, माया बहुत शक्तिशाली और खुद क्या हो जाते, दिल शिकस्त, डिप्रेस्ड होता नहीं है, छोड़ देते हथियार, डाल देते, हमसे नहीं होगा, ये बहुत कठिन काम है और वास्तव में कठिन है. और कुछ कुछ जो होते हैं, कभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं, और ये करते करते क्या हो जाते हैं, थकान आ जाती है, रुक जाते हैं. कब तक लड़ाई करते रहे, कब तक संघर्ष करते रहे. कभी अमृत वेला होता है, कभी नहीं होता है. कभी मुरली बहुत अच्छी लगती है, कभी एकदम बोरिंग. कभी ये ब्राह्मण परिवार एकदम भाग्य, मेरा भाग्य कितना अच्छा परिवार है, और कभी यही परिवार दुश्मन. ये लोग ठीक लोग नहीं है, इनसे दूर ही रहना चाहिए. कभी कभी क्या करते हैं, दूसरों को पंडा बना देते हैं, बाप को छोड़कर किसी दूसरे को आधार बना लेते हैं अपना, तिनके का सहारा ले लेते हैं, और बाप से क्या हो जाता है फिर, किनारा. कई बार कोई सहूलियत, कोई फैसिलिटी, कोई आधार बना लेते हैं साधन को. ये साल्वेशन शब्द केवल मुरलियों में ही आया है, नहीं तो हिंदी इंग्लिश में साल्वेशन शब्द का मुक्ति अर्थ है. बाबा सहूलियत के लिए साल्वेशन शब्द का प्रयोग करते हैं, भगवान की इंग्लिश भी अलग ही है. साहित्य सम्राट है, जो उसकी मर्जी. ये तो साल्वेशन मतलब साल्वेशन, मुक्ति, मोक्ष. कई बार पुराने स्वभाव संस्कार बाहर आ जाते हैं, आदत, हैबिट्स, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स जो अपने आप काम करती है. विलियम जेम्स अमेरिकन ऑथर है, वो लिखता है कि मैं खड़ा था अपने दोस्तों के साथ, चर्चा चल रही थी थोड़ी सी साइकोलॉजी पर, चाय की टपरी है वहां खड़ा था, उधर से हमने देखा एक व्यक्ति आ रहा है जिसके सिर पर बहुत सारा वजन है. वो कभी मिलिट्री में था 20 साल पहले, अभी रिटायर्ड है. और फिर हमने सोचा, मैंने अपने मित्रों से कहा, देखो मैं तुमको दिखाता हूँ एक मजेदार खेल. और वो जोर से चिल्लाता है अटेंशन. और वो मिलिट्री वाला जो पहले मिलिट्री में था, अब नहीं है, 20 years back, अटेंशन हो जाता है, उसका सारा सामान गिर जाता है. वो आग बगुला होके गुस्से में आता है, वो कहता है किसने अटेंशन कहा, तुमने अटेंशन क्यों कहा. विलियम जेम्स कहता है, यहाँ क्यों अटेंशन कहना, पाप है क्या, मैंने तो ऐसे ही कहा. वो व्यक्ति कहता है, मैंने अपनी पूरी उम्र मिलिट्री में गुजारी है, अभी 20 साल हो गया मिलिट्री से दूर हूं, पर जैसे ही अटेंशन शब्द कान में आया, अटेंशन हो गया. द फोर्स ऑफ हैबिट, द फोर्स ऑफ संस्कार. क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया था कि अटेंशन बोलते ही अटेंशन होना. वो कहता है, अगर मैं मर भी जाऊं और कब्र में हूं, अगर कोई अटेंशन कहे तो हो सकता है कि मैं खड़ा हो जाऊं. इतना डीप. वैसे ही एक दूसरा मिलिट्री का व्यक्ति है जो लेफ्ट साइड जब सोता है तो खर्राटे लेता है, उसकी पत्नी उसके घर वाले बहुत परेशान है, खर्राटे भी ऐसे है कि धार जैसे बाजू वाले घर को सुनाई देते। उसकी पत्नी बहुत परेशान है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है, कहती है क्या करूं, ये जब लेफ्ट साइड में सोते हैं तो खर्राटे लेने लगते हैं। साइकोलॉजिस्ट पूछता है और राइट साइड में, वो कहती है राइट साइड में नहीं लेते पर लेफ्ट साइड में भयंकर खर्राटे लेते हैं और वो बहुत गहरी नींद में होते हैं, क्या किया जाए। साइकोलॉजिस्ट कहता है कि एक प्रयोग करके देखो, जब वो सो रहा है लेफ्ट साइड में तो उसके कान में जाके कहो राइट टर्न। वो मिलिट्री का आदमी है, वो कहती है पर वो सोते हैं, मेरी बात कहां से सुनेंगे, बहुत गहरी नींद में खर्राटे ले रहा है आदमी, उसके कान में कुछ कहने से वो थोड़ी सुनेगा। साइकोलॉजिस्ट कहता है करके तो देखो। तो हो जाती है, वो सोता है लेफ्ट में और वो उसके कान में कहते हैं राइट टर्न, और आश्चर्य वो राइट टर्न हो जाता है, मतलब स्वप्न में भी नींद में भी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। इसलिए नींद के प्रयोग बहुत किए गए हैं संसार में, जो भी आदत बनानी है रात को सोते समय वो बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ और सो जाओ, सबकॉन्शियस माइंड उसे ग्रहण करता है। कुछ भी एनीथिंग, ये रात का सोने का समय जो है ना और उठने का, ये बहुत पावरफुल है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का बैरियर उड़ जाता है यहाँ। इसलिए सारे दिन भर कोई कितना भी परमात्मा चिंतन करे श्रीमत, परंतु रात का समय यदि वो विकारी स्वप्न करते करते देखते देखते कुछ सो रहा है तो वो विकार गहरे चले जाते हैं। दिन भर कितना ही सोचे फिर काम नहीं बनेगा। और शास्त्रों में दिखाया है रात के समय जो असुर होते थे वो जागते हैं, रात के समय जो राक्षस होते हैं उनकी शक्ति दुगुना हो जाती है, रात के समय उनकी साइज और ज्यादा हो जाती है। ये सब असुरों की कैरेक्टर की विशेषता है कि असुर रात में एक्टिव हो जाते हैं, दिन में इतना कुछ नहीं होता है। जैसे बिस्तर पर लेटो और सोने की कोशिश करो, सारे दिन भर प्यूरिटी 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 प्यूरिटी, और बेड पे जाते ही आकर्षण। क्योंकि इसीलिए इस सोने के समय का जो पीरियड है इस पर प्रयोग करने, जब बेड पर लेट गए सारा कुछ लाइट्स ऑफ सब कुछ, तब हम क्या संकल्प करते करते सो रहे हैं, क्या देखते देखते सो रहे हैं, वो सीधा कहाँ जाता है, सबकॉन्शियस, और सबकॉन्शियस एक्टिव ही रहता है अंदर। इसलिए उसकी पत्नी ने कहा राइट टर्न, सो रहा है व्यक्ति खर्राटे ले रहा है फिर भी राइट टर्न हो गया। और एक कारण यह भी है क्योंकि उसका संस्कार है राइट टर्न लेफ्ट टर्न राइट टर्न लेफ्ट टर्न। तो बाबा ने कहा ये सारी बातें हैं, माया को फेस नहीं कर सकते, माया को परख नहीं सकते, उदास हो जाते, कभी हार कभी जीत, थक जाते हैं रुक जाते हैं, ये सब क्या है, लीलाएं हैं बच्चों की जो भगवान देख रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, ये बच्चों की एक्टिविटीज है। कभी किसी को सहारा बना लेते हैं किसी व्यक्ति को, वो व्यक्ति ही सब कुछ है, वो व्यक्ति ही अच्छा लगता है, उसके अलावा और कोई भी अच्छा नहीं लगता। या फिर कोई आधार कोई वस्तु एनीथिंग वो आधार बन गया है, ज्ञान आधार जिसका नहीं है वो यहां नहीं चल सकता। पुराने संस्कार, इसलिए अपने संस्कारों को चलो मिटा नहीं सकते पर आइडेंटिफाई तो कर सकते कि मेरा ये संस्कार है। मेरे से आगे जैसे ही कोई जाता है अंदर क्या होती है, खलबली ईर्ष्या होती है। अब ये जानना खाली जरूरी है कि होता है, ओनली दिस मच नो इट, कोई निंदा करता है तो बहुत बुरा लगता है और कोई स्तुति करता है तो रात में भी सोते समय वही शब्द गूंजते रहते हैं। आह मतलब हम जो है, हमारा जो व्यक्तित्व है वो दूसरों के ओपिनियन पर खड़ा हुआ है। सब आके मुझसे कहे कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें अच्छा लगा। सब ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, तुम दिखने में बिल्कुल ही असुंदर हो। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम आईने में जाके देखते हैं वास्तव में रियली कोई कहे कि तुम बूढ़े हो गए हो। हमें अपना व्यक्तित्व दूसरों के ओपिनियन के आधार पर नहीं बनाना, और ये बड़ा कठिन पुरुषार्थ है, क्योंकि हम प्रभावित होते हैं, हर चीज हमें प्रभावित करती है। कोई अगर कहे कि तुम में ये स्किल बहुत अच्छी है तो अच्छा लगता है, और कोई दूसरा आगे तुरंत कहे बिल्कुल नहीं है, तुरंत हलचल। तो इसमें भी बाबा ने क्या कहा, किसी आत्मा का को पंडा बना लेते हैं, अपना आधार बना लेते हैं, अपना मार्गदर्शक बना लेते हैं, सहारा बना लेते हैं, तिनके का सहारा है, बाप से किनारा करते थे, या किसी वस्तु को, साल्वेशन को, कोई सहूलियत को, कोई फैसिलिटी को। तो लास्ट में कुछ ही ऐसे हैं जो कोटों में कोई, ब्राह्मणों में कोटों में कोई, यहां जो है उनमें भी कोटों में कोई ही ऐसे हैं जो क्या करते हैं, क्या है कोटों में कोई, माया को परखते हुए पार करते, सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी हो पाठ देखते, सदा हर्षित हो चलते रहते, सदैव यह निश्चय रहता है कि अब तो पहुंचेंगे। तो ये सब क्या है, बच्चों की लीलाएं, भगवान ऊपर से देख देख के खुश हो रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है, वंडर खा रहा है, ये कर क्या रहे है? और ये लोग कौन है, उनमें इसमें और भी 10 बातें गिनाई है। ये वो लोग है जिन्होंने भगवान को जाना है, जिन्होंने भगवान को पाया है, वर्षा पाया है, ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्राह्मण भी स्वयं को मान लिया, ब्रह्मा कुमार कुमारी का टाइटल भी लग गया, ईश्वरीय सेवार्थ निमित्त बने हुए, साधारण लोग नहीं है ये, बड़ी बड़ी सेवाएं करने वाले हैं, नामी ग्रामी उनकी बातें चल रही है, राजयोगी कहलाते हैं, प्राप्ति का अनुभव कर लिया, ईश्वरीय नशा है, प्राप्ति का नशा है, प्रारब्ध का निशाना भी दिखाई देता है, परंतु फिर भी ये होता है, इसलिए तो उसको आश्चर्य लगता है। एक तरफ नशा, एक तरफ प्राप्ति, एक तरफ सब कुछ, परंतु दूसरापन भीतर में, ये खालीपन, एक रिक्तता है। इसीलिए इसी रिक्तता को भरने के लिए ये नव्यक्त मुरलियों का अध्ययन आवश्यक है। सबसे पहले डायग्नोसिस होना चाहिए कि जिसको हम प्यार 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 कर कह बैठ रहे, वो प्यार है ही नहीं, वो मोह है। जिसको हम कह रहे लेबल ही तो गलत लगाया है। पति शक्कर ढूंढ रहा है, ढूंढ ढूंढ के परेशान है। आखिरकार पूछता है पत्नी से, शक्कर कहाँ है? वो कहती है, जो नमक का डिब्बा है ना, जिसमें नमक का लेबल लगा हुआ है, उसके अंदर शक्कर है। अब लेबल ही गलत लगाया है तो क्या कर सकते हैं? है मोह, लेबल लगा के रखा है लव, मेरा डायग्नोसिस ही गलत हो गया। तो ट्रीटमेंट क्यों करेंगे? लव तो चाहिए, पर वो लव था क्या? वो तो कुछ और ही था। इसी मुरली में बाबा ने एक लास्ट लाइन कही है, घबराओ नहीं, क्या करो, गहराई में जाओ। बस ये है, मेडिकल और स्पिरिचुअल में यही डिफरेंस है। मेडिकल में पहले इन्वेस्टिगेशन होते हैं, डायग्नोसिस होता है, फिर ट्रीटमेंट चालू होता है। यहाँ पे डायग्नोसिस ही ट्रीटमेंट है। बस इतना जान लो, ये पाप है, ये मूर्खता है, तुरंत ट्रीटमेंट आ जाती है। दैट इज द डिफरेंस। और बाबा ने कहा, कर्म की ये मशीनरी है, अपने काम करती है, बहुत स्वभाव संस्कार निकलेंगे और तीव्र होगी। ये कुछ लॉज है जो साइकोलॉजी की किताब में या विश्वभर में जो कर्म पर किताबें लिखी है लोगों ने। बाबा ने इनडायरेक्टली इनका वर्णन किया है, डायरेक्टली नहीं वर्णन किया है। कौन से लॉज है? पहला लॉ सबको पता है, कार्य कारण का लॉ। जिसने जो कर्म किया है उसको उसका फल भुगतना ही पड़ेगा, कोई भी कर्म के नियम से, सिद्धांत से छूट नहीं सकता। वो सबसे पहला नियम है जिसको कहते हैं द ग्रेट लॉ, एज यू सो सो शैल यू रीप। जो भी किया है, अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, उसको कहते हैं द ग्रेट लॉ। ये फर्स्ट लॉ है कर्म का। इसलिए जब कुछ समझ नहीं आता है बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, छोटे 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 छोटे, उसको कहते हैं स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। हॉस्पिटल में कई बार लोग आते हैं, पेशेंट्स को एक एक एप्पल देके चले जाते हैं, चुपचाप पेन देके चले जाते हैं, कुछ भी देके चले जाते हैं, फ्लावर देके चले जाते हैं। कौन है, क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं बताते। हाँ एक केला और 10 फोटो, फोटो ऑप्स जितना हो सके कर्म को, सेवाओं को निष्काम करते जाने। सेवा कर दी भूल गए, सेवा कर दी भूल गए, सेवा कर दी भूल गए, कुछ पता ही नहीं, ठीक है छोड़ दिया, डन। इसको कहते हैं ग्रेट लॉ। जो भी किया उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। पुण्य करते जाओ, परिस्थितियों के समय अचानक मदद मिलेगी। जिसने कई आत्माओं की सेवा की है, कईयों का कल्याण किया है, उसके साथ दुआएं चलती है सूक्ष्म रूप से, प्रार्थनाएं चलती है सूक्ष्म रूप से। और ये पावर ऑफ प्रेयर्स, कल हमने वो प्रेयर चेन देखी थी ना, एक्टिविटी, ये बहुत काम करती है। चाहे कोई भी हो, वो 1983 में अमिताभ बच्चन को इंजरी हो गई थी, पूरे देश ने प्रार्थना की थी मूवी की शूटिंग हो रही थी, स्प्लिनेक्टॉमी, एक्सेसिव ब्लीडिंग, सेप्टिक शॉक, मैसिव ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग था, कितने सारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हुए और उन्हीं में उसको, उनको हेपेटाइटिस बी हो गया था। तो पावर ऑफ प्रेयर्स में पूरे देश ने प्रार्थना की थी मूवी का एंडिंग एक्चुअली जो था उसमें उनकी डेथ थी, पर डायरेक्टर ने इस इवेंट के बाद जो मूवी कंप्लीट की वो चेंज कर दिया था फिर वो जिंदा रहे, उसमें मूवी हिट हो गई, वो एक अलग बात है। तो दैट वाज अ पावर ऑफ प्रेयर, दुआओं की शक्ति। जब दिल से दुआएं, तो जिन्होंने किसी को सुख दिया है दूसरों को, उनके लिए क्या निकलता है अंदर से? दुआएं निकलती है। तो ये काम करना है, ये कर्म का पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है कर्म का, द लॉ ऑफ क्रिएशन। जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमने क्रिएट किया है, और जो हम चाहते हैं हो वो हम डिजायर से क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी, यू क्रिएट इट। फ्योडोर डोस्टोवस्की रशियन लेखक है, बहुत बहुत प्रसिद्ध। वो बचपन में बोलने नहीं आता था उसको, तोतला बोलता था। तो वो क्या करता था, समुद्र में जाकर वो पत्थर डालता था और चिल्लाता था। वहां विजन क्रिएट किया था कि मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूं। उसकी इंटेंस डिजायर थी, और जो बहुत तीव्र इच्छा होती है वो कैसी होती है? पूर्ण होती है, क्योंकि फिर प्रकृति मदद करेगी। प्रकृति ऐसी ऐसी चीजें अपने आप लाएगी कि अपने आप जुड़ेगा सब कुछ। सब मिलेगा अपने आप, प्रकृति षड्यंत्र करेगी, षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी, उस व्यक्ति को उस वस्तु को तुम तक पहुंचाने की। इफ यू डिजायर समथिंग इंटेंसली एंड प्योरली द एंटायर यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक दैट डिजायर कम ट्रू। सारी कायनात षड्यंत्र करेगी, तुमको पहुंचाएगी वहां तक, जो भी चाहिए फिर। ये नियम है, अटल नियम है। तो लॉ ऑफ क्रिएशन आप क्रिएट कर सकते हो, जो करना है क्रिएट। कोई रिलेशनशिप है जिसमें डिस्टरबेंस चल रहा है, उसका भी प्रयोग करके देखो। रात में सोते समय ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया है, लवफुल हो गया है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई, करते करते सो जाओ। उस व्यक्ति से ना तो बात की ना उससे कुछ किया, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये अपने ऊपर काम करते करते अपने आप वो काम हो जाए। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ क्रिएशन, जो हम डिजायर करेंगे वो होगा। तीसरा है लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी कहता है कि एक्सेप्ट कर लो पहले कि हम दुर्गति में हैं, हम गिर गए। विनम्रता का नियम, कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी भगवान का जो गहरा अनुभव हो रहा चाहिए वो नहीं हुआ है। बुलिया तो बहुत पढ़ ली, क्लासेस बहुत सुन ली, परंतु फिर भी ये जब तक ह्यूमिलिटी नहीं तब तक कुछ नहीं। नम्रता मधुर था, क्वेश्चन था, दो बातें। तीसरा है लॉ ऑफ ग्रोथ। ये सारे जुड़े हुए हैं एक्चुअली, पर आप किसी भी किताब को ढूंढो, ये 12 नियमों की चर्चा है। बहुत सारी सेल्फ मोटिवेशन बुक्स हैं, उन सब में इसकी चर्चा है। लॉ ऑफ ग्रोथ, हमारा हमारी कमिटमेंट कितनी है ग्रोथ के प्रति, वो डिसाइड करेगा सब कुछ। तो लॉ ऑफ ग्रोथ, हमको अगर आगे बढ़ना है तो उसके प्रति क्या चाहिए, एक निष्ठता, समर्पण भाव चाहिए, तो ही ग्रोथ होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगला लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल होना है। तीन स्टेजेस है। स्टेज नंबर 1 कि मेरे साथ जो भी हुआ वो उसकी वजह से हुआ, वो दोषी है। मेरे साथ बहुत खराब हुआ पर कारण कौन है, वो। स्टेप नंबर 2, धीरे धीरे समझ में आता है ना, ना, ना उसका इतना दोष नहीं है, वो 50% मैं 50%, आधा दोष उसका है आधा दोष, आधा मेरे पेरेंट्स का दोष है, उनको मुझे सिखाना चाहिए था, आधा मेरा दोष, आधा दोष पति का आधा दोष पत्नी का है, ये यहां तक पहुंचे। थर्ड स्टेप है 100% दोष किसका है, मेरा ही है, उसका तो कुछ है ही नहीं। ये अध्यात्म की 3 स्टेजेस है और हर एक को मैक्सिमम 2nd स्टेज तक तो सब पहुंचे। ये तो समझ में आ गया कि पूरा वो दोषी नहीं है, 50-50, आधा उसका आधा मेरा। बट हाईएस्ट स्टेज क्या है, किसी का कुछ भी लेना देना नहीं है, मेरे साथ जो हो रहा है मेरा ही है, मैं जहां हूं, जिस डिपार्टमेंट में हूं, जिस जो मेरा वर्किंग आवर्स है, जो मेरा बॉस है, जो मेरे साथी और जो मेरे जूनियर्स है, हाँ, सब मेरे ही है, सब मेरे किए धरे है, मैं ही करता धरता हूं। अगला लॉ ऑफ कनेक्शन, इस सृष्टि में सब कुछ जुड़ा हुआ है, ये नहीं समझो कि आप अलग, ये अलग, ये अलग, अलग, सब कुछ कनेक्टेड है, ये नियम है। छोटा बड़ा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सब कुछ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। आत्मा एक साथ क्यों आ जाती है, दो कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे पहले से ही। किसी को देखकर लगता है ना, इसको मैं बहुत पहले से जानता हूं, और किसी को देखकर ही फर्स्ट ही मीटिंग है, बाद में ऐसा लगता है इससे दूर ही रहना चाहिए, क्यों, वाइब्रेशन ही कुछ और है, ठीक नहीं लगता है, बिल्कुल बेचैनी होती है, क्यों, कनेक्शन है, बहुत सारा कनेक्टेड है सब कुछ यहां पर। कहीं जगह जाने के बाद लगता है जगह पर मैं आया हूं, डेजावू, और कई जगह पर कितनी बार जाके आए पर फिर भी लगता है ये तो कुछ नया ही है, ये सब कनेक्टेड है इस सृष्टि में। तो लॉ ऑफ कनेक्शन कहते हैं इसको। फिर लॉ ऑफ फोकस, जब तक फोकस नहीं करेंगे सिंगल टास्क, तब तक ग्रोथ नहीं होती। इसलिए कहा कि सब अलग अलग पुरुषार्थ है, अमृत वेला एक अपने आप में अलग पुरुषार्थ है, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा तो ही होगा ये पावरफुल। ब्रह्मचर्य अपने आप में पुरुषार्थ है, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा तो ही होगा। मुरली अध्ययन चिंतन मनन अलग ही पुरुषार्थ है, प्रैक्टिकल अलग ही पुरुषार्थ है, भोजन अलग पुरुषार्थ है, एक्सरसाइज रोज करना ये अलग ही पुरुषार्थ है, मेडिटेशन बैठ के करना अलग ही पुरुषार्थ है। सब जुड़ा हुआ है बट फिर भी यू नीड फोकस एंड यू नीड कमिटमेंट। और ये सब करने के बाद में भी नहीं, कर्म योग में नहीं, बेरोजगार तीव्र पुरुषार्थी नहीं बनना है, कर्म चाहिए, एक्शंस चाहिए, ड्यूटीज चाहिए, वही तो पता चलता है माया। एक ही दिन में कितनी बातें हो जाती है, सुबह से लेकर रात तक कितने लोगों से संपर्क हो जाता है, बाप रे बाप। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है तुम देवता हो, तुम वो, कोई कहता है चंडाल हो तो सब कुछ एवरीथिंग, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, इतनी सारी परिस्थितियां तो तुरंत ही आ जाती है। वो पेपर तो दे ही रहे, ये भी चल रहे हैं साथ साथ इसलिए बाबा ने कहा सबको देखो, खेल देखो, ये बड़ा पुरुषार्थ है। तो लॉ ऑफ फोकस, फिर लॉ ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड गिविंग, ये जैसे कहा ना देने का रूल, सेल्फलेसनेस इज अ वर्च्यू, देते जाओ देते जाओ देते जाओ। ये बिना, ये दूसरी मुरली उसी पर है, दानी महादानी और वरदानी। वो वैसा चार्ट बनाना है आपको और उसमें जो जो पॉइंट्स है वो डालने हैं। सिंपल मुरली है, रचता दानी के क्या पॉइंट्स है, महादानी के क्या पॉइंट्स है और वरदानी के क्या पॉइंट्स है। तो वो चार्ट बनाना ग्रुप में पोस्ट करेंगे, उसके अंदर वो सारी पॉइंट्स पैराग्राफ वाइज दिए मुरली में, ये इसकी ये इसकी ये इसकी। और जो चीज हम लिखते हैं खुद वो याद रहती है, नहीं लिखते वो याद नहीं रहती है। दूसरों का डायरेक्ट पोस्ट, कई लोग होमवर्क भी चोरी करते हैं, दूसरा का होमवर्क एज इट इज वर्ड्स भी वैसे के वैसे पोस्ट कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड गिविंग, अगला है लॉ ऑफ चेंज, पकड़ के नहीं रहना है पुरानी धारणाओं को, मतों को, अपने आप को अपडेट करते रहना है, चेंज करना है विद टाइम, एवरीथिंग चेंजेस, लेटेस्ट कॉन्शियस कमिटमेंट चाहिए। बहुत इतना कड़क इतना हार्ड नहीं कि मुझे यही चाहिए वही चाहिए ऐसा ही चाहिए, फ्लेक्सिबल लचीला। हाँ जिद्दी स्वभाव वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगला है लॉ ऑफ हियर एंड नाउ, मतलब इस पल में जीना, इस पल में सदी छिपी हुई है, इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी। बस ये जो पल है अभी बैठे हैं ना, अभी 6:10 है, बस यही पल है अभी। नाउ इंग्लिश में बुक है पावर ऑफ नाउ, बहुत फेमस है। नाउ मीन्स अभी, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। वो किसी ने एक वीडियो भेजा था, वो दूल्हे राजा बैठे हैं, सब उसके पाँव को कुछ कुछ धो रहे, तो उसके जीजा जी या कोई आए, वो आए, वो कहते मैं धोऊंगा मैं धोऊंगा, ऐसे ऐसे धो रहे और लुढ़क गए, कौन गए तभी के तभी गए, ऐसा है फॉर फास्ट। ऊपर व्यक्ति खड़ा है छत पर, नीचे मित्र आया, वो मित्र से कहते हैं हेलो हाय मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने, सीढ़िया उतर रहा है, अभी ऊपर ही था, अभी कहता मैं आ रहा हूं, सीढ़िया उतरते उतरते हार्ट अटैक खत्म। ऐसा होता है अच्छा आत्मा तृप्त हो गई होगी। तो बहुत बहुत निश्चिंत सब कुछ। तो प्रेजेंट दिस मोमेंट, फिर लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड, कर्म कर दो और छोड़ दो, वो जो मिलना है अपने आप मिलेगा, हैव पेशेंस, धीरे धीरे होगा काम। सृष्टि में कोई भी चीज जो है ना हरी में नहीं है, बादल, सूरज, एक मनुष्य छोड़कर सृष्टि में सब कुछ, सारे जानवर देखो आराम से चलते हैं, कोई कोई उसको टेंशन है कोई, आराम से। ये मनुष्य का ही गड़बड़ है सारी, घोड़ों को दौड़ाते हैं और मनुष्य बैठ के देख रहे। कोई घोड़े, अगर मनुष्य दौड़े तो कोई घोड़े बैठ के देखते हैं क्या? सारे मनुष्य के अजीबोगरीब काम है। कोई नहीं आएगा देखने अगर ये दौड़ने लगे तो। तो पेशेंस, धीरे धीरे। लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन, लास्ट। जो भी आप छोटा सा करते हो वो स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूट टू द होल। छोटी सी एक्ट ऑफ काइंडनेस, छोटा सा, वो एक चेन की तरह क्रिएट हो जाता है। तो एक एक्टिविटी है जिसको कहते हैं कर्मा चेन एक्टिविटी। ये आपको खाली बता रहे हैं आप इसको कर सकते, कर्मा चेन एक्टिविटी। जैसे ग्रुप में बैठेंगे, सर्कल में सब लोग, एक सिनेरियो दिया जाएगा। जैसे रास्ते में एक व्यक्ति जा रहा था, उसे पैसे मिल गए, उसने वो पैसे लिए और उसमें एड्रेस लिखा हुआ था, कोई वॉलेट मिल गया, उसके घर तक जाके पहुंचा दिया। ये है स्टोरी। तो ये स्टोरी मैंने अरविंद भाई को बता दी, तो आप उनको बताएंगे कि इससे क्या क्या हुआ, और स्टोरी को आगे बढ़ाते 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 चेन रिएक्शन क्रिएट करेंगे। तो वो जिसने दिया उसने बहुत धन्यवाद किया, ठीक है, फिर उसको इसने उसको जॉब पे रख लिया कि तुमको नौकरी चाहिए तो मैं तुमको जॉब दे देता हूँ। ये जॉब में बहुत आगे निकल गया, ये वहाँ का बॉस बन गया, बॉस बन गया तो इसने इनको बहुत लोगों को एम्प्लॉय किया, कल्याण किया, मतलब एक चेन। इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ। तो एक है पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, एक व्यक्ति ने दूसरे को धोखा दे दिया तो फिर क्या क्या हुआ उसकी चेन। तो ऐसी स्टोरी बनाते बनाते आगे बढ़ानी होती है उसमें। तो इसको कहते हैं कर्मा चेन रिएक्शन एक्टिविटी। अगर हम कहीं बाहर जाएंगे तब ये करेंगे, यहाँ थोड़ा मुश्किल है। इस पूरी भट्टी के बाद जो पिकनिक करेंगे ना एक, तब करेंगे। हाँ, जनवरी में देखते हैं कब तक ये पूरा होता है प्रोजेक्ट। तो ये थी पहली मुरली। दूसरी मुरली वो तीन पर है, दानी, वरदानी और महादानी। तो उसकी पॉइंट्स लिखनी है आपको एक, और कल जो एक्टिविटी बताई थी वो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, वो बहुत पावरफुल एक्टिविटी है। तो आज तो सबको उसको करना है, कल खाली याद कर लिए था, आज क्या करना है उसको करना है। तो हमारे कितने पॉइंट्स हैं समर्पण सूत्र के? 10 विथ एक्शंस। कौन करके दिखाएगा? दीपाली बहन, अच्छा आपने बनाया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट। 10 समर्पण सूत्र, पहले हम समर्पण सूत्र याद कर लेते। पहला समर्पण सूत्र, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। दूसरा समर्पण सूत्र, एक से सब संबंध। तीसरा, एक के प्रति समर्पण भाव। चौथा, एक की याद। पांचवा, एक का संग। एक से प्यार, एक बार एक भरोसा। एक से रूरियान, एक के साथ सारे कर्तव्य। और दसवा, एक ही सब कुछ, एक में ही सब कुछ। तो ये थे हमारे 10 समर्पण सूत्र। तो कल हमने इसको विथ एक्शंस किया था, तो आज दीपाली बहन आप कराओ एक्शंस के साथ। और आज का होमवर्क यही है, सबको इसको एक्शन के साथ करके, हाँ, रिकॉर्डिंग करके भेजना है वीडियो, 1 मिनट का, 2 मिनट का। स्टार्ट, आप माइक दे दो। हाँ वो तो है होमवर्क, आज 2 होमवर्क है। और आज ट्रॉफीज वाले भाई आए हैं क्या नेपाल के? आज 3 ट्रॉफीज है, हाँ ये लेके जाएंगे, फिर भी 2 मिनट।
ओम शांति। एक शिव बाबा दूसरा ना कोई,
एक शिव बाबा
दूसरा ना कोई, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ऐसे क्रॉस में, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। एक से सर्व संबंध, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व संबंध, एक का, एक से, हाँ, एक से समर्पण, एक प्रति समर्पण, एक के प्रति समर्पण, एक के प्रति समर्पण, एक के प्रति समर्पण, एक की याद, एक की याद, एक की याद, एक का संग, एक का संग, एक एक से प्यार, एक से प्यार, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, एक से ही रूहान, एक से ही रूहान, एक से ही रूहान, एक एक से सर्वस्व, एक से सर्व कर्तव्य, एक से एक के साथ सर्व कर्तव्य, एक के साथ सर्व कर्तव्य, एक ही सब कुछ, एक में ही सब कुछ, एक ही सब कुछ, एक में ही सब कुछ।
एक बार फिर से प्रॉपरली करेंगे,
बैठ जाओ। एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये हो गया पहला। एक के साथ सर्व संबंध, एक के साथ सर्व संबंध, एक के साथ सर्व संबंध, एक के प्रति समर्पण भाव, एक के प्रति समर्पण भाव, एक के प्रति समर्पण भाव, एक की याद, एक की याद, एक की याद, एक का संग, एक का संग, एक का संग, एक से प्यार, एक से प्यार, एक से प्यार, एक बल एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, एक से रूरियान, एक से रूरियान, एक से रूरियान, एक से सर, एक के साथ सारे कर्तव्य, एक के साथ सर्व कर्तव्य, एक के साथ सारे कर्तव्य, एक ही सब कुछ, एक में ही सब कुछ, एक ही सब कुछ, एक में ही सब कुछ। तो ये है हमारे 10 समर्पण गोल्डन सूत्र, स्वर्णिम सूत्र। तो आज का होमवर्क है, ये सूत्र आपको पहले तो याद करने हैं, उसका सारा कुछ ग्रुप में भेज चुके हैं, पहले 10 सूत्र याद कर लो, एक बार रिवाइज करो बाबा के सामने, और फिर उसको एक्शंस के साथ जोड़ो। दीपाली बहन ने वो एक्शन का पीडीएफ भी बना दिया है, तो वो भी भेज देंगे, वो एक्शंस को याद करना और फिर इसको करना, अकेले में बाबा के कमरे में बैठ के मत करना, नहीं तो बाहर बाजू वाले हॉस्पिटल लेके आएंगे। तो इतने दिनों से हम लोग, अच्छा एक ट्रॉफी, तो नेपाल वाले भाई आए हैं, नेपाल की ट्रीन ट्रॉफी आए, उनके नाम बता देते हैं बस, कौन कौन से नाम है, ये ट्रॉफी विनर्स तो नहीं आए पर भाई जी आए हैं, तो जीवन रश्मि, जीवन रश्मि एक, दूसरी ट्रॉफी है शांतिराम अधिकारी, और तीसरी ट्रॉफी ये बहन तो इसके पहले भी ली है, ईशोरी बहन, ईशोरी बहन, तो भाई जी आ जाओ, आप उनके ऑन बिहाफ ट्रॉफी ले लीजिए, इधर आ जाओ 2 मिनट।
ओम शांति। शुरू से पट्टी में मैं भी भाग तो ले रहा हूँ, होमवर्क भी कर रहा हूँ, कभी कभी पोस्ट करता हूँ, कभी नहीं भी करता हूँ, लेकिन वो ट्रॉफी के लिए मैंने वो जोड़ नहीं लगाया, मेरा तो अपना ट्रॉफी नहीं है, लेकिन दूसरे हमारे वहाँ भाई बहन है उनका ट्रॉफी लेके जा रहा हूँ, मैं अभी आया था तो इसी मौके में। बाकी जो अभी एंजल ऑफ शिव का ये पुरुषार्थ चल रहा है, इसने बहुत ही हेल्प किया है आगे बढ़ने में, और वहाँ नेपाल में भी बहुत लोग हैं, भाई बहन है जो पुरुषार्थ तीव्र कर रहे हैं, और उनका भी अभी देखते हैं हम एक्टिविटीज, मतलब उनका चाल चलन बहुत चेंज हो रहा है, उनका इस योग की स्थिति भी बहुत अच्छी हो रही है, तो ओवरऑल बहुत इससे इम्प्रूवमेंट हो रही है सबका। और अभी 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 जो भाई साहब गए थे भट्टी में, तो उसके बाद में तो इतने बढ़ गए हैं, तो एग्ज़ाम देने वाले भी बहुत बहुत बढ़ गए हैं, तो हाँ हाँ ना देखा, नेपाली एग्जामर भी अभी थर्ड में देखा, हिंदी इंग्लिश उसके बाद थर्ड आ रहे हैं शायद, अभी नेपाली वाले हम कंपटीशन हो रही नेपाली मराठी है बहुत सारे। हाँ हम तो पहले भी दे रहे थे, लेकिन अभी और फोकस हो रहे, कभी कभी छूटती थी, अभी कभी कभी राम्रो लागे, कभी कभी अभी रात हो जाती है तो भी देते हैं लोग, मतलब अभी सोने के टाइम में नहीं, तो ऐसे अलबेला नहीं होते, देकर ही सोते, ऐसे हो रहे हैं, मतलब सब फोकस हो रहे हैं।
थैंक यू। तो कितने दिनों से हम एक गीत सुन रहे हैं, भट्टी की शुरुआत में और भट्टी के बाद में, कौन सा गीत है, यादों में तुम हो बाबा, और ख्वाबों में तुम ही बाबा, और जीवन में तुम ही से बाबा, और सांस में कौन है, तुम ही बाबा, सागर तुम, साहिल तुम, दिल की तुम, धड़कन और सरगम की धुन भी तुम ही, और आंधी तूफानों में मैं खो ना जाऊं प्यारे बाबा, सुनसान काली रातें राहों में आते जाते भयभीत करती पल पल बेचैन दिल को माया निशब्द फैली, तेरे ही सहारे अब तो निकल पड़ा हूं अकेले, ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सर, ओ बाबा मेरे बाबा, यादों में तुम, ख्वाबों में तुम, हर दर्द की दवा कौन है बाबा, और गम में सुकून कौन है बाबा, और सपनों की उड़ान कौन है बाबा, और जीवन की राह कौन है बाबा, सफर में खुशी कौन है बाबा, और जीने का सहारा कौन है बाबा, और हर पल में तुम हो बाबा, और ये गीत गाने वाला कौन है तो इतने दिनों से हम क्लास के पहले और क्लास के बाद ये गीत सुन रहे हैं, और आज हम तो एक वो होता है ना जो क्या कहते हैं उसको, रॉ मटेरियल एकदम खराब और फिर एकदम एक मूर्ति तैयार हो जाती है, तो एक आपको मैं गीत सुनाता हूँ।
यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा, जीवन तुम ही से बाबा, हर सांस तुम हो बाबा, सागर तुम हो बाबा, साहिल भी तुम हो बाबा।
तो रॉ मटेरियल को तो आज हम सब के बीच में हरीश भाई जी उपस्थित है, और बहुत ही सुंदर तरीके से ये गीत गाया है, और देवरंजन भाई जी है, उनको हमने देखा नहीं अभी तक, वो भी आए हैं, अच्छा पहले मधुबन में ही थे, तो दो मिनट आप आएंगे, तो इन्होंने अपने बहुत सुरीली आवाज़ में ये गीत गाया है, और उस गीत को सुनते हुए भी जो गीत गाता है उसके भाव उसमें समा जाते हैं, कितनी तन्मयता से व्यक्ति गाता है वो उस उनके शब्दों में वो भाव में पता चलता है। ये गीत नहीं, इनके बाबा के जितने भी गीत है वो, और एक क्वेश्चन इन आपके ऊपर रखा था हमने, जैसे सोचोगे वैसे बनोगे, भाई साहब का चित्र था उसमें, वो समझ में आया था क्वेश्चन क्या है, एक प्रश्न था MCQ, जैसे सोचोगे तुम, वो इसीलिए रखा था इनका चित्र, वो कितनों को समझ में आया पता नहीं, एक MCQ रखा था, अभी याद आया तो आज हमारे बीच में हरीश भाई जी है, अचानक आए हैं, मुझे पता नहीं था आप यहाँ हैं, जब आपका मैसेज आया थोड़ी देर पहले कि मैं यहाँ हूँ और क्लास में आऊँगा, तो हमें बहुत 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 खुशी है कि हमारे इस यज्ञ में एक ऐसी एक आत्मा है जिसकी इतना समर्पण भाव है, बाबा के लिए इतना प्यार है, लास्ट सो फास्ट और बाबा के जितने भी सारे गीत गाए हैं उन सभी गीतों में एक ईश्वरीय एक रूहानी जादू है जो कोई भी सुन ले, चाहे बाहर का भी कोई सुन ले, अंदर एकदम घुस जाता है, एकदम टच सीधा सबकॉन्शियस तो राइट टर्न लेफ्ट टर्न तो सीधा अंदर घुस जाता है, और बाबा के लिए प्यार अपने आप बढ़ जाता है। तो आप एक दो शब्द।
ओम शांति, शुक्रिया बाबा का बहुत, और आप सबका, सचिन भाई जी का बहुत शुक्रिया, आप सब समझ सकते होंगे मैं क्यों शुक्रिया बोल रहा हूँ, बहुत सारी चाबियाँ उन्होंने हमें दी है, बहुत सारे ताले खोलने की, सो उनका अपने जीवन का भी अनुभव है, ऐसी छोटा सा अनुभव है मेरा कि दुकान थी हमारी छोटी सी उज्जैन में, तो वहाँ पर मैं बैठता था और मैं बोलता था ये धूल मिट्टी वाला काम मुझे नहीं करना है, ये इससे निकालो मुझे, मेरे को म्यूजिक करना है, ऐसा लाइफ हो जिसमें म्यूजिक ही म्यूजिक हो। सो गुरु जी मिले, बीके थे पंडित कृष्णकांत शुक्ल जी, उन्होंने फिर, वो हमेशा बाबू जी को बोलते थे ये यहाँ बैठने के लिए नहीं पैदा हुआ है, बाबू जी उनके साथ में ऐसा हो जाता था कह रहे ये एक बिगड़ गया दूसरे को भी बिगाड़ हो गया सो ऐसे करते करते धीरे धीरे राह मिली, फिर जब बाबा पहली बार, मैं सबसे पहले 96 में आया था ज्ञान सरोवर में जब बना था, और दादी जी प्रकाशमणि दादी जी से मैं मिला था, तब ज्ञान में नहीं चलता था, गुरुजी बहुत कोशिश करते थे, खींचते थे, पर मैं नहीं जाता था, समझ रही थी। कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि हमेशा से आदत थी मांगने की, तो अभी भाई जी ने भी बोला कि अच्छे उससे मांगो तो फिर कायनात भी मदद करती, तो मुझे तो बाबा ने मदद की। मैं सोचता था, एक गाना मैं हमेशा गाता था कदम कदम, बोलता बाबा अभी मेरे गाने कभी आएंगे, अभी एक ही गाना कब तक गाऊंगा मैं, तो मेरा है भी नहीं। सो इतना अबंडेंस मिल जाता है कई बार अगर हम सच्चे दिल से, अगर अच्छे भाव से और निस्वार्थ भाव। बहुत सारे आज पॉइंट नोट किए मैंने। सो ऐसी जीवन जीने की कला बाबा ने हमें सिखाई है। और फिर ऐसा लगता है, फिर मुझे लगता है अरे ये गाना नहीं भी गाता, कहीं समर्पित भी होता तो भी उतना ही मजा आता मुझे तो। सो कुछ लाइन मैं सुना देता। ये देव रंजन भाई है हमारे, पहले गॉडलीवुड में थे, अभी उनकी मुंबई में कुछ सेवाएं हैं तो स्टूडियो में ही मेरे रहते हैं, तो उन्होंने म्यूजिक किया है साथ।
ख्वाबों में तुम हो बाबा, जीवन तो ही से बाबा, हर सांस तुम हो बाबा, सागर भी तुम हो बाबा, साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इलाही तूफानों में खोना जाऊं मैं बाबा, इलाही तूफानों में खोना जाऊं मैं बाबा, सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, निःशब्द भैली छाया, निःशब्द भैली छाया, तेरे अब तो निकल पड़ा हूं मैं बाबा। ओ बाबा तू ही सारा, ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा मेरे बाबा, दर्द की दवा तुम बाबा, गमे सुकून तुम बाबा, सपनों की नाहे तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, सफर में खुशी तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, सांसों में तुम हो बाबा, हो बाबा मेरे बाबा, यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा।